एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
तो आज हम जिनकी बात करने वाले हैं वो है हैवलॉक एलिस और उनकी एक बहुत ही खास किताब, उनकी आत्मकथा माय लाइफ।
हाँ, और ये किताब उनके जाने के बाद छपी 1939 में, लेकिन इसे लिखने में मतलब संवारने में उन्होंने 40 साल से ज्यादा का वक्त लगाया।
तो सबसे पहले ये हैवलॉक एलिस थे कौन? मतलब एक ब्रिटिश डॉक्टर थे, मनोवैज्ञानिक, लेखक, समाज सुधारक भी,
और अपने वक्त के शायद सबसे शुरुआती सेक्सोलॉजिस्ट में से एक।
1859 से 1939 तक उनका जीवन काल रहा।
हाँ,
और ये समझना बहुत जरूरी है कि वो किस माहौल में काम कर रहे थे। विक्टोरियन जमाना था, बहुत सख्त नैतिकता, यौन विषयों पे तो जैसे बिल्कुल चुप्पी।
बिल्कुल।
और ऐसे टाइम में एलिस ने इंसान के अनुभव के एक बहुत ही कह सकते हैं अनछुए पहलू को, यानी कामुकता को समझने की एक शांत पर लगातार कोशिश शुरू की।
और उनकी कहानी आज भी क्यों इतनी मायने रखती है? देखिए, माय लाइफ सिर्फ घटनाओं का एक लेखा जोखा नहीं है,
नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये अपने आप को गहराई से समझने का, आत्मविश्लेषण का एक बहुत हिम्मत वाला काम है। यहां विज्ञान और उनका निजी अनुभव एक साथ आते हैं।
सही कहा।
ये उस इंसान को समझने की कुंजी है जिसने उन वर्जित, टैबू समझे जाने वाले विषयों पर बोलने की हिम्मत की जब दुनिया शायद सुनना भी नहीं चाहती थी।
चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। एलिस का जन्म हुआ 1859 में। पिता समुद्री कप्तान थे तो अक्सर घर से बाहर ही रहते थे, और माँ काफी धार्मिक थीं तो घर का माहौल वैसा ही था। वो अपनी बहनों के साथ पले बढ़े, शायद इसका भी असर रहा हो उन्हें महिलाओं का नजरिया समझने में।
हो सकता है, बिल्कुल।
लेकिन बचपन ज्यादातर अकेला ही बीता। किताबों में डूबे रहते थे शेक्सपियर, शेली, और बहुत शर्मीले थे। वो खुद कहते थे मॉर्बिड शाइनेस।
हाँ, लेकिन इसी शर्मीलेपन में शायद वो दुनिया को ज्यादा गौर से देखते थे, एक ऑब्जर्वर की तरह।
हाँ, और यहीं से एक दिलचस्प बात पता चलती है। जैसे जब उन्हें पहली बार रात्रि उत्सर्जन हुआ, मतलब नॉक्टर्नल एमिशन, तो जमाने के हिसाब से तो शर्म या घबराहट होनी चाहिए थी, पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसे एक वैज्ञानिक की तरह नोट किया, उसका रिकॉर्ड रखा।
अरे वाह।
हाँ, ये उनके काम करने के तरीके का एक, आप कह सकते, शुरुआती संकेत था, बिना नैतिक जजमेंट के सिर्फ समझना, ऑब्जर्व करना।
और उनकी फॉर्मल पढ़ाई ज्यादा नहीं हुई, मतलब वो काफी हद तक सेल्फ टॉट थे, ऑटोडिडैक्ट जिसे कहते हैं।
बिल्कुल।
फिर 16 साल की उम्र में उन्हें ऑस्ट्रेलिया भेजा गया। वजह तो सेहत थी, लेकिन ये सफर उनकी पहचान बनाने वाला एक अहम मोड़ बन गया। ऑस्ट्रेलिया में वो काफी अकेले रहे, पहले ट्यूटर का काम किया, फिर एक छोटे से स्कूल में पढ़ाने लगे।
और ये अकेलापन उनके लिए गहरे आत्ममंथन का दौर साबित हुआ। इसी दौरान उन्होंने जेम्स हिंटन की एक किताब पढ़ी, लाइफ इन नेचर, और इस किताब ने उन पर बिजली जैसा असर डाला। वो इसे अपना रूपांतरण या कन्वर्जन कहते हैं।
अच्छा, रूपांतरण।
हाँ, हिंटन के विचारों से उन्हें जैसे एक दिशा मिल गई, विज्ञान, नैतिकता, कला, इन सबको जोड़ने वाला एक नजरिया। और यही उन्होंने अपने जीवन का मिशन तय किया,
क्या मिशन था वो?
कि वो यौनिकता सहित समाज और मन से जुड़ी समस्याओं को समझने के लिए वैज्ञानिक तरीका अपनाएंगे। इसे उन्होंने एक तरह की पवित्र जिम्मेदारी माना, और 1879 में वो इसी पक्के इरादे के साथ इंग्लैंड लौटे।
लंदन वापस आकर उन्होंने सेंट थॉमस हॉस्पिटल मेडिकल स्कूल में एडमिशन लिया, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो डॉक्टर बनकर प्रैक्टिस नहीं करना चाहते थे।
अच्छा, फिर क्यों?
उनका मकसद था वैज्ञानिक ज्ञान और वो विश्वसनीयता हासिल करना जो यौनिकता जैसे संवेदनशील विषय पर शोध के लिए जरूरी थी।
समझ गई, मतलब अथॉरिटी बनाने के लिए।
हाँ, और पढ़ाई का खर्च चलाने के लिए उन्होंने साहित्यिक काम किए, जैसे पुरानी नाट्य रचनाओं की मर्मेड सीरीज का संपादन किया। तो उनमें ये दोनों पहचानें साथ साथ चल रही थीं, वैज्ञानिक और साहित्यकार।
वो उस समय के लंदन के जो प्रोग्रेसिव सर्कल थे उनमें भी काफी एक्टिव हुए, फेलोशिप ऑफ द न्यू लाइफ जैसे ग्रुप से जुड़े।
और वहीं उनकी मुलाकात ओलिव श्रेनर, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, एडवर्ड कारपेंटर जैसे बड़े विचारकों और लेखकों से हुई।
और यहीं से उनके सबसे महत्वपूर्ण काम की नींव पड़ी। उन्होंने जॉन एडिंगटन साइमंस के साथ मिलकर स्टडीज इन द साइकोलॉजी ऑफ सेक्स पर काम शुरू किया।
साइमंस वो कवि और निबंधकार थे ना?
हाँ, और वो खुद समलैंगिक थे, तो इस विषय पर उनका नजरिया और अनुभव बहुत अहमियत रखता था। इस सीरीज का पहला खंड आया सेक्सुअल इन्वर्जन 1897 में,
और ये अंग्रेजी में समलैंगिकता पर शायद पहला गंभीर सहानुभूति वाला और गैर आलोचनात्मक अध्ययन था।
बिल्कुल, पहला मेडिकल स्टडी कह सकते हैं।
लेकिन इसके छपते ही तो जैसे भूचाल आ गया।
हाँ, जबरदस्त हंगामा हुआ। साइमंस के परिवार वाले डर गए, उन्होंने अपना नाम किताब से हटवा लिया।
अरे,
और किताब बेचने वाले जॉर्ज बिडबरो पर अश्लीलता फैलाने का मुकदमा कर दिया गया। ये एलिस के लिए बहुत बड़ा सदमा था, सार्वजनिक अपमान था एक तरह का।
सही बात है, काम पर सीधा हमला।
हाँ, ये उनके लिए एक बड़ी प्रोफेशनल तबाही थी। लेकिन इसका एक अजीब नतीजा भी निकला।
वो क्या?
इस मुकदमे ने एलिस को एक साहसी विचारक के तौर पर स्थापित कर दिया, जो दबे छिपे विषयों पर बोलने की हिम्मत रखता है। वो सीधी टक्कर से तो पीछे हट गए, लेकिन उन्होंने अपना काम बंद नहीं किया। अगले 30 सालों में उन्होंने अमेरिका से स्टडीज के 6 और खंड छापे।
अच्छा, अमेरिका से?
हाँ, ब्रिटेन में मुश्किल हो गया था तो अमेरिका से छापे, और इनमें उन्होंने इंसानी कामुकता के लगभग हर पहलू को कवर किया। वैज्ञानिक डेटा, अलग अलग संस्कृतियों के उदाहरण और गहरे सहानुभूति के साथ।
तो भले ही ब्रिटेन में वो विवादित रहे, दुनिया भर में उनकी एक पहचान बन गई।
हाँ बिल्कुल, डॉक्टरों, मनोवैज्ञानिकों, समाज सुधारकों के बीच उनका काफी प्रभाव बढ़ा। वो एक अथॉरिटी बन गए।
अपने बाद के सालों में एलिस एक जानी मानी हस्ती तो बन गए थे, हालांकि विवाद हमेशा साथ रहे।
हाँ,
उन्होंने चिट्ठियों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना रखा था। विद्वान लोग भी उन्हें लिखते थे और आम लोग भी, अपनी निजी समस्याओं के बारे में, सलाह के लिए।
हाँ, वो एक तरह के सलाहकार या कहें कि कन्फेसर बन गए थे। लोग उन पर भरोसा करते थे।
उनकी पत्नी एडिथ लीज उनके जीवन का एक बहुत ही अहम और कह सकते हैं जटिल हिस्सा थी।
हाँ, एडिथ खुद भी लेखिका थी, वक्ता थी और लेस्बियन थी।
उनका विवाह उस वक्त के हिसाब से बहुत ही अपरंपरागत था। वो अक्सर अलग रहते थे। एडिथ की दूसरी महिलाओं से संबंध थे और एलिस के भी अपने अफेयर थे।
ये रिश्ता उनके लिए गहरी बौद्धिक साझेदारी का जरिया तो था, लेकिन साथ ही गहरे निजी दर्द और तनाव का भी कारण था। बहुत कॉम्प्लेक्स था।
एडिथ की मृत्यु 1916 में हुए, जिसका एलिस पर बहुत गहरा असर पड़ा। बाद में उन्हें फ्रांसवा लाफिट सियों मिली, जो उनकी साथी भी बनी और सहयोगी भी। उनके साथ उन्हें कुछ सुकून मिला। उन्होंने लिखना जारी रखा, सिर्फ सेक्स पर नहीं बल्कि कला, साहित्य, सामाजिक दर्शन, इन सब पर भी लिखा। उनकी एक किताब द डांस ऑफ लाइफ 1923 काफी मशहूर हुई।
हाँ, उसमें उन्होंने जीवन को एक लगातार चलने वाली एक कलात्मक प्रक्रिया की तरह देखा। एचएल मेंकिन, मार्गरेट सैंगर जैसे बड़े लोगों ने उनके काम की बहुत तारीफ की, और जैसा हमने शुरू में कहा, इसी लंबे दौर में उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी लगभग 40 साल अपनी आत्मकथा माय लाइफ लिखने और उसे बार बार एडिट करने में लगाए।
40 साल?
हाँ, वो इसे अपने पूरे काम का सबसे जरूरी अंतिम हिस्सा मानते थे। 8 जुलाई 1939 को उनका निधन हो गया। वो अपने पीछे वैज्ञानिक काम का एक बहुत बड़ा भंडार और अपनी जिंदगी की एक बहुत ध्यान से गढ़ी हुई कहानी छोड़ गए हैं। एलिस का दुनिया को देखने का नजरिया बड़ा अनोखा था। उसमें 19वीं सदी का विज्ञान भी था और एक तरह का निजी रहस्यवाद भी।
हाँ,
कैसे?
देखिए, उनका मूल दर्शन था प्रकृतिवाद। मतलब वो मानते थे कि इंसानी प्रकृति भी कुदरत का ही हिस्सा है और इसे बिना किसी नैतिक सोच या पूर्वाग्रह के समझना चाहिए।
अच्छा।
उनके लिए कामुकता कोई पाप या गंदी चीज नहीं थी, बल्कि जीवन की एक बुनियादी शक्ति थी, एक फंडामेंटल लाइफ फोर्स, दुनिया को चलाने वाली ऊर्जा का एक अहम हिस्सा।
और उनकी वो डांस ऑफ लाइफ वाली सोच।
हाँ, द डांस ऑफ लाइफ, ये उनकी खास अवधारणा थी।
जीवन एक नृत्य है।
ब्रह्मांड कोई रुकी हुई मशीन नहीं, बल्कि एक गतिशील लयबद्ध नाच है। और इंसान की जिंदगी का मकसद है अपनी लय ढूंढना और इस बड़े ब्रह्मांडीय नृत्य के साथ तालमेल बिठाना। इसमें अपनी सहज प्रवृत्तियों और बुद्धि के बीच, आजादी और अनुशासन के बीच संतुलन साधना शामिल है।
ये सोच उनके वैज्ञानिक काम को एक तरह का दार्शनिक आधार देती थी।
बिल्कुल, और यहीं एक और बहुत अहम बात आती है। उन्होंने नॉर्मल यानी सामान्य क्या है, इसी परिभाषा को चुनौती दी।
कैसे? जैसे समलैंगिकता या हस्तमैथुन या महिलाओं की यौन इच्छा, इन चीजों को उस वक्त बीमारी या कोई नैतिक पतन माना जाता था।
हाँ, विकृति मानते थे।
सही कहा। एलिस ने कहा, नहीं, ये विकृतियां नहीं हैं, ये इंसानी प्रजाति के अंदर पाए जाने वाली स्वाभाविक भिन्नताएं हैं, वेरिएशंस हैं। उन्होंने नैतिक फैसलों की जगह ऑब्जर्वेशन और अंडरस्टैंडिंग को रखा, और यही बदलाव आधुनिक सेक्सुअलॉजी की नींव बना।
तो क्या चीज थी जो उन्हें ये सब करने के लिए प्रेरित करती थी? जाहिर है, जानने की इच्छा तो थी ही।
हाँ, जबरदस्त बौद्धिक जिज्ञासा थी उनमें। लेकिन साथ ही इंसानी दुख दर्द के लिए एक गहरी हमदर्दी भी थी। उन्होंने देखा था कि सेक्स को लेकर अज्ञानता के वजह से लोगों को कितनी तकलीफें झेलनी पड़ती हैं, टूटते रिश्ते, शर्म, जुल्म। उनका मानना था कि ज्ञान, नॉलेज ही इन दुखों का इलाज है। उनका मिशन एक तरह से आत्मा का डॉक्टर बनने जैसा था।
क्या इसमें उनके अपने निजी अनुभवों का भी कोई हाथ था?
हाँ, बिल्कुल था। उनकी खुद की कुछ यौन स्थितियां थीं जो उस समय सामान्य नहीं मानी जाती थीं, जैसे अपनी पत्नी एडिथ के साथ उन्हें नपुंसकता का अनुभव हुआ, या यूरोलाग्निया नाम की एक बहुत ही दुर्लभ यौन रुचि थी उन्हें, जिसका संबंध मूत्र से है।
अच्छा।
इन अनुभवों ने उन्हें कामुकता के किसी एक नॉर्मल खांचे में फिट होने से रोका, लेकिन उनके लिए ये शर्म की बात नहीं बनी, बल्कि ये समझ का जरिया बने, खुद को अपनी इन असामान्यताओं को समझने और स्वीकार करने से ही वो दूसरों की भिन्नताओं के प्रति भी वैसी ही स्वीकृति रख पाए। तो एक तरह से देखें, उनका पूरा काम खुद को और पूरी इंसानियत की विविधता को समझने और मान्यता दिलाने का एक बड़ा प्रयास था।
और मुश्किल हालात का सामना वो कैसे करते थे, जैसे वो मुकदमे वाली बात?
उनका तरीका सीधा भिड़ने का नहीं था। वो ज्यादातर रणनीति के तहत थोड़ा पीछे हटते थे और शांति से अपना बौद्धिक काम जारी रखते थे। जैसे उस मुकदमे के वक्त उन्होंने सार्वजनिक बहस में पड़ने की बजाय चुपचाप अपना काम जारी रखा।
और प्रकाशन अमेरिका शिफ्ट कर दिया।
हाँ, तो वो टकराव से बचते थे लेकिन अपना रास्ता निकाल लेते थे। निजी चुनौतियों का सामना भी उन्होंने कुछ इसी तरह किया। एडिथ के साथ जो उनका उलझा हुआ दर्द भरा रिश्ता था, उसके अनुभवों का उन्होंने विश्लेषण किया, उस पर लिखा और उसे अपने बड़े दार्शनिक नजरिए में फिट करने की कोशिश की, जैसे अपने दर्द को भी बौद्धिक स्तर पर समझना।
क्या ये उनकी ताकत थी या कमजोरी?
शायद दोनों। ये उनकी ताकत थी कि वो इतना दबाव झेल सकते थे, भावनाओं को काबू में रख सकते थे, लेकिन शायद ये कमजोरी भी थी कि वो गहरी भावनाओं से एक तरह की दूरी बना लेते थे।
वैसे अगर हम उनके विचारों को आज के नजरिए से देखें तो एक विवादास्पद पहलू भी है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
वो क्या है?
एलिस यूजिनिक्स में विश्वास रखते थे, मतलब नस्ल सुधार वाले विचार में, और सामाजिक डार्विनवाद में भी।
अच्छा,
यूजिनिक्स?
हाँ।
वो मानते थे कि समाज के बेहतर गुणों को बढ़ावा देना चाहिए और जिन्हें वो अयोग्य मानते थे उनकी नसबंदी कर देनी चाहिए।
ओह, वो इसे स्वास्थ्य और सामाजिक प्रगति के नजरिए से देखते थे, और उस जमाने में कई प्रगतिशील विचारक ऐसा सोचते थे, लेकिन ये सोच बहुत खतरनाक थी, जैसा कि बाद में दुनिया ने देखा।
तो वो अपनी आत्मकथा में भी इसका जिक्र करते हैं?
हाँ, माई लाइफ में वो इन विचारों को समाज की भलाई के लिए एक तर्कसंगत वैज्ञानिक नजरिए के तौर पर पेश करते हैं। आज हमें ये बेशक बहुत चिंताजनक लगता है, और ये बताते हुए हम सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं कि उनके विचार क्या थे, हम किसी भी तरह से इसका समर्थन नहीं कर रहे।
ये जरूरी स्पष्टीकरण है। चलिए अब उनकी जिंदगी के तीन अहम मोड़ों पर बात करते हैं। पहला था उनका ऑस्ट्रेलियाई रूपांतरण 1875-1879।
हाँ।
हुआ ये था कि 16 साल की उम्र में उन्हें सेहत के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजा गया। वहां वो एक गांव में टीचर बन गए, काफी अकेले रहे। और इसी अकेलेपन में उन्होंने हिंटन की वो किताब पढ़ी और उन्हें एक तरह का आध्यात्मिक अनुभव हुआ जिसने उनकी जिंदगी का मकसद साफ कर दिया
कि वो इंसानी कामुकता को वैज्ञानिक तरीके से और सहानुभूति के साथ समझने के लिए अपनी जिंदगी लगा देंगे। ये वो मकसद था जिसने उन्हें आगे की सारी मुश्किलों और विवादों में टिके रहने की हिम्मत दी। उनकी बड़ी किताब स्टडीज का खाका उनके दिमाग में यहीं बनना शुरू हुआ था।
दूसरा बड़ा मोड़ आया एडिथ ली से मिलना और शादी करना 1891।
बिल्कुल।
उनकी मुलाकात एडिथ से फेलोशिप ऑफ द न्यू लाइफ में हुई। एडिथ, जैसा हमने बताया, आजाद ख्याल लेखिका, वक्ता और लेस्बियन थी। उनकी अपनी अपनी यौन जटिलताओं के बावजूद वो एक दूसरे के आदर्शों से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने शादी कर ली, जिसे उन्होंने खुला व्यवहार कहा।
ये इतना जरूरी क्यों था? क्योंकि ये रिश्ता उनकी जिंदगी की, आप कह सकते हैं, केंद्रीय भावनात्मक और बौद्धिक धुरी बन गया।
अच्छा।
ये उनके प्रगतिशील आदर्शों का एक जीता जागता प्रयोग था, और इसने उन्हें किताबी आदर्शों और इंसानी जज्बातों की असलियत के बीच जो फासला होता है उसका सामना करने पर मजबूर किया।
इसने उन्हें बदला कैसे?
उन्हें एक बेहतरीन बौद्धिक साथी मिली, लेकिन साथ ही एक लगातार चलने वाली भावनात्मक चुनौती भी। इस रिश्ते ने प्यार की उलझनों, जेंडर की प्रकृति और यौन तालमेल न बैठने की दर्द भरी हकीकतों के बारे में उनकी समझ को बहुत गहरा किया। उनका ये विवाह उनकी पूरी वयस्क जिंदगी की सबसे बड़ी केस स्टडी बन गया, जिसने उनके लेखन को भी गहराई दी।
और तीसरा निर्णायक मोड़ वो था बेडबरो अश्लीलता मुकदमा 1898।
हाँ, वो मुकदमा
सेक्सुअल इन्वर्जन के छपने पर जो अश्लीलता का मुकदमा चला। निशाना तो किताब बेचने वाले जॉर्ज बेडबरो थे, लेकिन असल में ये एलिस और उनके काम पर समाज का सीधा हमला था।
हाँ, उन्हें एक तरह से अश्लील साहित्य फैलाने वाला करार दिया गया।
ये इतना अहम क्यों था? क्योंकि ये एक ऐसी तबाही थी जो उनका करियर खत्म कर सकती थी।
सही बात है।
इसने ये भी साफ कर दिया कि उनके काम को लेकर समाज में कितना जबरदस्त विरोध था, और इसने उन्हें एक बड़ा रणनीतिक फैसला लेने पर मजबूर किया।
इसने उन्हें बदला कैसे? देखिए, इस मुकदमे ने उन्हें अपने देश इंग्लैंड में तो अलग थलग कर दिया, लेकिन विदेशों में उन्हें वैज्ञानिक आजादी के लिए लड़ने वाले एक नायक, एक शहीद का दर्जा मिल गया।
अच्छा, ये भी हुआ?
हाँ, इसने उन्हें सार्वजनिक मंच से पीछे हटने और ज्यादा सतर्क एक विद्वान वाली छवि अपनाने पर मजबूर किया। और जैसा हमने कहा, उन्होंने अपनी किताबें अमेरिका से छपवाना शुरू किया, जिससे विडंबना यह है कि उनके काम को और भी बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पाठक वर्ग मिला।
तो सदमे ने उनके इरादे को शायद और पक्का कर दिया।
हाँ, कह सकते हैं उनके संकल्प को और मजबूत किया। तो इन सब बातों से, एलिस की जिंदगी से हम क्या सीख सकते हैं, क्या सबक मिलते हैं? मेरे ख्याल से सबसे पहली बात तो है शांत मगर मजबूत इरादे की ताकत। मतलब बदलाव लाने के लिए हमेशा चीखने, चिल्लाने या बड़े बड़े प्रदर्शनों की जरूरत नहीं होती। ताकत लगातार चुपचाप अपने मकसद के लिए काम करते रहने से भी आती है। एलिस ने यही दिखाया।
सही।
दूसरा, प्यार रिवाजों से बड़ा हो सकता है। हैवेलॉक और एडिथ का रिश्ता, ये प्यार की उलझनों का एक बहुत गहरा सबक है। ये दिखाता है कि पारंपरिक यौन और रोमांटिक दायरों के बाहर भी गहरे सार्थक रिश्ते बन सकते हैं, लेकिन लेकिन इसके लिए बहुत त्याग, ईमानदारी और जबरदस्त भावनात्मक हिम्मत चाहिए होती है। ये आसान नहीं होता।
बिल्कुल। तीसरा सबक।
तीसरा, खुद को जानना ही दूसरों को जानने की शुरुआत है। दूसरों के लिए सच्ची हमदर्दी और समझ, ये अक्सर तब शुरू होती है जब हम खुद को हिम्मत से बिना किसी जजमेंट के देखते और समझते हैं। एलिस ने यही किया। और आखिर में जीवन को एक कला की तरह जीना, उनकी वो जीवन का नृत्य वाली सोच हमें याद दिलाती है कि जिंदगी सिर्फ नियमों और जिम्मेदारियों का बोझ नहीं है, ये एक खूबसूरत प्रदर्शन भी है जिसमें हमें अपनी लय खुद ढूंढनी होती है, उसके साथ तालमेल बिठाना होता है।
हाँ, और ये सबक ये आज भी उतने ही प्रासंगिक लगते हैं, चाहे वो समाज के बनाए कायदों को चुनौती देना हो, या अपरंपरागत रिश्तों को समझने की कोशिश हो, या फिर खुद को स्वीकार करने का सफर। ये चीजें आज भी हमारे जीवन का हिस्सा हैं।
बिल्कुल। एलिस की कहानी याद दिलाती है कि ये संघर्ष नए नहीं है और इनमें अकेले नहीं है हम।
तो इस पूरे चर्चा से तीन खास बातें अगर निकालनी हो तो वो क्या होंगी? सबसे पहले, एक भावनात्मक अंतर्दृष्टि। शायद उनके जीवन से सबसे ज्यादा दिल को छूने वाला सबक हैवलॉक और एडिथ के उस जटिल रिश्ते से ही मिलता है। ये दिखाता है कि प्यार वाकई परंपराओं को तोड़ सकता है, लेकिन ये सफर दर्द भरा, उलझा हुआ और खूबसूरती से जटिल भी हो सकता है, जहां सबसे गहरे रिश्ते अक्सर नियम तोड़कर ही बनते हैं।
एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि, उनके काम और विचारों से जो सबसे अहम बौद्धिक बात निकलती है वो है सामान्यता, यानी नॉर्मलसी की परिभाषा को बदलना। उन्होंने नैतिक फैसलों की जगह अवलोकन और समझ को अहमियत दी, और जिन्हें समाज खराबी या विकृति मानता था, उन्हें इंसानी विविधता का स्वाभाविक हिस्सा बताया। ये बदलाव, जैसा हमने कहा, आधुनिक सेक्सोलॉजी की तो बुनियाद है ही, साथ ही किसी भी क्षेत्र में स्वीकृति और समझ बढ़ाने का एक बहुत ताकतवर तरीका है।
और आखिर में, एक सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि, सबसे व्यवहारिक जो शायद हम सब पर लागू हो सकता है। वो जीवन सबक ये है कि क्रांति शुरू करने के लिए हमेशा चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी बदलाव लाने वाली सबसे बड़ी ताकत एक शांत अटूट इरादा होता है, जिसे हिम्मत और ईमानदारी से लगातार आगे बढ़ाया जाए। चाहे वो एक बार में एक पन्ना लिखकर हो, या एक बार में एक विचार साझा करके। एलिस की जिंदगी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ, जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।